ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, समावेशी अदालत कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमों के प्रबंधन और प्रशिक्षण सहित जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत ये ट्रेन 3 रेल मार्ग मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरू और चेन्नई नागरकोइल पर चलाई जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लोगों को रेल यात्रा की तेज और विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होगी। मेरठ और लखनऊ के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे और ये यात्रा का अनुमानित समय लगभग 7 घंटे 15 मिनट में होगा। चेन्नई एगमोर से नागरकोइल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से त्रिची, मदुरई, डिंडीगुल और तिरुनेलवेली सहित कुछ प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन केंद्रों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन देश से प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि तमिलनाडु राज्य के लाखों विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा योजना से लाभ हुआ है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल पढ़ाने का पूरी तरह से समर्थन करती है। श्री प्रधान ने कहा कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। श्री प्रधान ने कहा कि तमिल भाषा राष्ट्रीय गौरव का एक विषय है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न हितधारकों से विचार और सुझाव लेने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक हुई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ने लोगों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों सहित हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। विधेयक का उद्देश्य कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का प्रारूप लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले श्री सोरेन ने कहा था कि वे आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 3 दिन की यात्रा पर ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी अहसनल बुल्केया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अगले महीने की 3 तारीख को ब्रुनेई दारुस्सलाम का दौरा करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों में आज कल दूसरे दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत लिए हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशानेबाज अवनी लेखरा ने स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने रजत पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता। उधर भारत के शीर्ष कंपाउंड तीरंदाज राकेश कुमार और सरिता अपने अपने वर्ग में दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारतीय एथलीट आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व अंडर 2020 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड समय के साथ पदक जीता। आरती 44 मिनट 39.39 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। आरती ने 47 मिनट 21.04 सेकंड का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन की झुआमा बेवा ने स्वर्ण और मेलिंग चेन ने रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में 265 करोड़ रूपये की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना, स्वच्छता बनाए रखना और इसका संरक्षण करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।